नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे रविवार के कार्यक्रम में। हमारे इस नव वर्ष की शुरुआत हुई है 2010 और जैसे जैसे भक्ति में हमारे वर्ष बीतते जाते हैं वैसे ही हम अपेक्षा रखते हैं कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। ये हमारी अपेक्षा होती है कि एक वर्ष भक्ति में और हमारा बीता। तो कई बार भक्त जो हैं पिछले वर्ष और इस वर्ष की भक्ति में क्या बढ़ोतरी हुई है उसका एक मुआयना करते हैं। दे टेक एन इन्वेंटोरी अंग्रेजी में कहते हैं कि पिछले वर्ष हम भक्ति में कितने प्रगत थे और इस वर्ष हम भक्ति में कहां तक पहुंचे। जैसे भौतिक संसार में भी आप देखिए जब कोई कहीं पर नौकरी कर रहा है। हरे कृष्ण आइए इधर आइए। किसी नौकरी में है तो वहां पर प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट प्रमोशन। जैसे मैं वायु सेना में था तो वहां पर रैंक्स दी जाती है अलग अलग। शुरुआत में पायलट ऑफिसर, फिर फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, इस प्रकार से बढ़ोतरी होती है और अंततः एयर चीफ मार्शल। या आर्मी में जनरल, जो आर्मी का जनरल होता है। तो हर क्षेत्र में आप देखिए अपेक्षा यही होती है कि जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में है क्या उसकी उस क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं। तो 2009 बीत चुका है, अब हम 2010 में हैं। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या हम 2010 में भौतिक रूप से हैं या आध्यात्मिक रूप से हैं? आर वी इन 2010 मटीरियली और स्पिरिचुअली? क्या कहोगे आप? भौतिक रूप से? अच्छा, आप में से कितने इस पक्ष में हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से 2010 में हैं? नहीं, आज का संडे फिश कार्यक्रम आध्यात्मिक नहीं है, 2010 में ही हो रहा है ना, और 2010 में आज तो ये पहले महीने की अंतिम तारीख है, तो बहुत से कार्यक्रम हो चुके हैं ना आध्यात्मिक। तो आप लोग इस बात को तो मानते हो ना कि आध्यात्मिक रूप से हम 2010 में हैं, है ना? कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है ये। अर्थात 2010 में भी हम भक्ति कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है। और यदि ये पूछा जाए कि भौतिक रूप से क्या हम 2010 में हैं, कि सबके आध्यात्मिक देह हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं है ना? भौतिक रूप से भी हम 2010 में हैं। तो अब यदि ये पूछा जाए कि 2009 में हमारा जो भौतिक शरीर था और 2010 में ये जो अब हमारा भौतिक शरीर है, इसमें क्या वृद्धि हुई है या कटौती हुई है, क्या कहोगे? कटौती हुई है। खैर, महाप्रसाद प्लेट की तरफ देखा जाए तो उस रूप से यदि हम देखें कि 2009 में मेरे धोती कुर्ते का साइज क्या था, खैर इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत कृपावश हमें यह धोती कुर्ता दिया है। धोती में कोई साइज हो ही नहीं सकता, कितना भी बड़ा हो जाए वो धोती उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। तो कहा गया है कि भौतिक रूप से इस संसार में हर एक वस्तु उसकी कटौती होती है। इट इज ऑलवेज ऑन द पाथ ऑफ डिग्रेशन। उदाहरण दिया जाता है कि आप एक ताजा फल को बाहर रख दो पेड़ से तोड़कर, धीरे धीरे क्या होगा, वो सड़ने लगेगा। उसी प्रकार से अब देखिए, हमारे शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है कि हम ये भौतिक शरीर को जिलाते हैं अन्न खाकर, दाल चावल अन्न खाकर या सब्जियां फल इत्यादि खाकर इस भौतिक शरीर को हम जिला रहे हैं। अब यदि हम इस अन्न को भी लें तो कुछ समय पश्चात अन्न में परिवर्तन किस प्रकार का आता है? दाल चावल बनाकर रख दो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कितने दिन, फ्रिज भी हो तो कितने दिन बेचारा वो फ्रिज भी रखेगा, वो भी नाक बंद कर कर बोलेगा बाहर निकालो अभी से। पाश्चात्य देश में, वहां अमेरिका में लोग एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता पुराना भोजन फ्रिज में रख रख कर, बाहर निकाल निकाल कर, रख रख कर, निकाल निकाल कर खाते हैं, फ्रोजन फूड। परंतु क्यों वो रखना पड़ता है? क्योंकि उसे यदि बाहर रखो तो सड़ जाएगा। तो ये उदाहरण दिया गया है कि जिस अन्न को खाकर हम इस शरीर को ताजा कर रहे हैं वो अन्न ही दो तीन दिन में सड़ जाता है। तो कल्पना कीजिए, जो अन्न अपने आप में सड़ रहा है वो अन्न इस शरीर को ताजा कैसे बनाएगा? समझ में आ रही? ये उसी प्रकार से है जैसे कि किसी व्यक्ति के अंदर भूत का संचार हुआ है, तो भूत के संचार से उसको मुक्त करने के लिए ये ओझा होते हैं। ओझा इनका एक पेशा होता है कि भूतों को वो दूर भगाएं उसके शरीर से, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एग्जॉर्सिस्ट। तो करते क्या है, कुछ कुछ धान्य लेते हैं और उसमें मंत्रोच्चारण कर कर वो क्या बोलते हैं, झाड़ू फूंक बाबा जैसे, वो कुछ फेंकते हैं, तो उसके वजह से फिर वो भूत का जो संचार है वो भूत उसमें से दूर हो जाता। अब ये उदाहरण दिया है कि कल्पना कीजिए वो जो अन्न के ऊपर इतना मंत्रोच्चारण किया है, यदि वो अन्न के अंदर भूत घुस जाए तो जिस अन्न के सहारे वो भूत से उसकी मुक्ति कराना चाहता है वो व्यक्ति, होगा क्या, फिर वो उसके ऊपर जब फेंकेगा तो और भूत जाएगा। तो जो अन्न हम खा रहे हैं वो अन्न ही क्षीण हो रहा है। इस भौतिक संसार का जो भी हम सहारा ले रहे हैं, चाहे घर का सहारा ले, चाहे कपड़ों का सहारा ले, चाहे अन्न का सहारा ले, पैसों का सहारा ले, चाहे रिश्ते नातों का सहारा ले, किसी का भी हम सहारा ले, यदि वो भौतिक स्तर पर है वो क्षीण होने वाला है। तो यदि सहारा ही क्षीण हो रहा है तो फिर हम कहां पर टिकेंगे। इसलिए जब हर वर्ष बीतता है तो हमें हमारे जीवन का मुआयना भौतिक स्तर पर नहीं करना चाहिए कि भौतिक स्तर पर मेरी कितनी प्रगति हुई है, क्योंकि वो प्रगति एक भ्रम है, इट्स एन इल्यूजन, वो प्रगति केवल एक भ्रम है। परंतु आध्यात्मिक स्तर पर, केवल आध्यात्मिक स्तर पर हम समय के तकाजे के अनुसार वृद्धि कर सकते हैं। परंतु आप लोग ये पूछोगे कि मैं जब नया नया भक्ति में आया था तो मैं इतना उत्साही था, मेरे अंदर ऐसा उत्साह था, मैं जो भी मुझे कुछ कहता तुरंत हां प्रभु जी, अब मैं प्रभु जी बन गया हूं, अब मुझे तो कोई पूछता नहीं इतना ज्यादा। पहले जब जब मैं आया था तो सब मुझे प्लेट बना बना कर देते थे, बिठा बिठा कर खिलाते थे, अब प्लेट के बजाय बाल्टी देते हैं। तो आप कहोगे अच्छी बात है ना, प्लेट थोड़ा सा प्रसाद देते हैं, अब बाल्टी देते हैं, लेकिन कहते हैं सर्विंग करो आप, वो भी प्रगति है, वो प्रगति है, क्योंकि अब सेवा का मौका मिल रहा है ना। तो अक्सर हम देखते हैं कि आध्यात्मिक स्तर पर भी धीरे धीरे वो जो एक उत्साह जो पहले था, वो उत्साह धीरे धीरे देखा जाता है कई बार कम होते हुए। अनुभव हुआ है कई बार तो कैसे हम आध्यात्मिक रूप से हर पल, हर दिन, हर वर्ष हम इसमें बढ़ोतरी करते रहें, यही हमारा उद्देश्य है कि नहीं। ये हम हर रविवार को, हर बुधवार को इतने सारे उत्सव, नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, जन्माष्टमी, बलराम जयंती, नरसिंह चतुर्दशी, रोज मंगल आरती, सोलामाला जप, चार नियम, इतने सारे सत्संग, इतना महाप्रसाद, इतनी तीर्थ यात्रा, किस लिए ये सब? ये सब इसलिए, एकमात्र उद्देश्य हमारा है कि हम वो जो हमारा ग्राफ है, स्पिरिचुअल ग्राफ, वो गोलोक वृंदावन की तरफ जाए, नीचे नहीं, गोलोक वृंदावन की तरफ वो ग्राफ जाना चाहिए, यही एक में वो उद्देश्य है हमारा। आप देखिए, भगवान गीता प्रारंभ किए सुनाना अर्जुन को, तो गीता में भगवान ने कैसे प्रोग्रेसिवली अर्जुन को ज्ञान दिया, सबसे पहले अर्जुन के अंदर सारे जो लक्षण हो रहे थे, सारे भौतिक आसक्ति के लक्षण, उसको कम करने के लिए देह और आत्मा में क्या भेद है शुरुआत में सुनाया भगवान ने। भगवान शुरू किए दूसरे अध्याय में बोलना, दूसरे अध्याय में भगवान शुरू क्या कर रहे हैं कि इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकलो। आप लोग जानते हैं देहात्म बुद्धि, हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी राधा गोविंद महाराज, वो एक भागवत सप्ताह कर रहे थे बिहार में, तो उन्होंने अपने प्रवचन में वो बार बार बोल रहे थे कि कैसे जीव इस भौतिक संसार में आता है तो देहात्म बुद्धि में पड़ जाता है। तो उनके प्रवचन के पश्चात एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा कि ये जो आप बता रहे थे बुद्धि के बारे में इतना, ये बुद्धि केवल ये शहरों में बुद्धि नहीं होती लोगों को क्या? तो महाराज ने कहा क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप अपने प्रवचन में बहुत बार बार बोल रहे थे देहात में बुद्धि, देहात में बुद्धि। तो वो बोल रहा था मुझे तो लगा कि शहर शहर में जो रहते हैं उनको बुद्धि ज्यादा होती, आप तो यही बोल रहे हैं कि देहात में रहने वालों की बुद्धि। तो इसमें समझ में आता है हम कलयुग निवासियों की बुद्धि कितनी है। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में भगवद गीता के प्रारंभ में आत्मा और शरीर में क्या अंतर है वहां से शुरुआत कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे कर्म योग तीसरे अध्याय में, फिर ज्ञान योग छठे अध्याय में, अष्टांग योग, फिर स्वयं के विषय में सातवें अध्याय में बता रहे हैं, फिर नवे अध्याय में भक्ति योग, और अंतिम अध्याय में जो चरम श्लोक है गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग कर पूर्ण शरणागति भगवान की कोई ले, इसका संदेश भगवान दिए। तो आप देखिए भगवद गीता में भगवान ने प्रोग्रेसिवली नॉलेज दिया, उस ज्ञान में बढ़ोतरी का ग्राफ आप देखोगे। रूप गोस्वामी जिन्होंने उपदेशामृत, उपदेशामृत रूप गोस्वामी ने जो दिया उसमें वो प्रथम श्लोक में क्या कहते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये सारे जो शारीरिक वेग है इन वेगों के ऊपर नियंत्रण कैसे प्राप्त करना, अर्थात ये जो देहात्म बुद्धि हमारी है इससे कैसे मुक्त होना। और फिर अंतिम श्लोक उपदेशामृत का क्या है, राधा कुंड में निवास। तो आप देखिए वाचो वेगम से लेके प्रोग्रेशन कहां तक पहुंचा है, राधा कुंड में निवास, जो परमोच्च स्थान है तीर्थ स्थानों में राधा कुंड। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षाओं में कहा चेतो दर्पण मार्जनम, वहां पर भी चित्त का मार्जन कैसे करें, अनर्थ निवृत्ति कैसे करें, और अंततः क्या है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम, श्रीमती राधा रानी का जो महाभाव है वो अंतिम श्लोक, आठ जो पद हैं, आठवां पद वो श्रीमती राधा रानी का महाभाव, उसमें भी आप क्या देखोगे, वो प्रोग्रेशन है। तो इन सब से क्या संकेत मिल रहा है कि हमारी भक्ति इन शास्त्रों के आधार पर होनी चाहिए, अर्थात हमारी भक्ति भी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, वो बढ़ोतरी उसमें होती रहनी चाहिए। अब गीता का ज्ञान, हालांकि गीता का ज्ञान तो ऐसा है और भागवत का भी ज्ञान ऐसा है कि हम कहीं से भी कोई भी श्लोक लें तो उस श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में इस प्रकार से उस श्लोक को प्रस्तुत किया है कि चाहे हम देहात्म बुद्धि में भी क्यों ना हो, श्रील प्रभुपाद जानते थे कि कलयुग में लोग जो हैं वो इस प्रकार से गीता या भागवत का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। किस प्रकार से कि प्रथम अध्याय से फिर दूसरा अध्याय, फिर तीसरा अध्याय, फिर पूरे 18 अध्याय या 18,000 श्लोक। तो यदि कोई कहीं से भी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करेगा, कोई भी पुस्तक कहीं से भी मिल जाए, उसमें भी वो ये जान पाएगा कि उसकी स्थिति कहां पर है और वहां से वो कैसे बढ़ोतरी कर सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों को इतनी सोच विचार कर अनुवादित किया, या इन ग्रंथों को इतने सोच विचार कर अनुवादित किया। प्रभुपाद एक एक शब्द के लिए कई बार दो दो दिन रुकते, कौन सा शब्द होना चाहिए ताकि आने वाले कलयुग में, पूरे कलयुग में, आने वाले पूरे कलयुग में कलयुग के निवासी कैसे उसे अपने जीवन में उतार कर भक्ति में बढ़ोतरी करें। तो इसी मुद्दे को लेते हुए आज हम भगवद गीता का एक ऐसा श्लोक लेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये संकेत दे रहे हैं कि कैसे हमें हमारी साधना में धीरे धीरे बढ़ोतरी लानी चाहिए। बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवद गीता के 6 अध्याय का 25वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से बता रहे हैं कि एक साधक को अपनी साधना में साध्य को कैसे सिद्ध करना चाहिए। समझ में आया? एक साधक को अपनी साधना में अपने साध्य को कैसे सिद्ध करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो पिछले मेरे साथ आप दोहराइए, शनै शनै उपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तये। शनै शनै उपरमे बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तये। शनै शनै उपरमे बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तये। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य, समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। तो यदि हम अब इस श्लोक का विच्छेदन करें तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि एक साधक को आत्मसंस्थम का अर्थ है आत्मा में स्थिर होना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। तो भगवान कह रहे हैं कि ये हमारा उद्देश्य है आत्मसंस्थम। आगे कहते हैं कि आत्मसंस्थम इस स्थिति को प्राप्त यदि करना है साधक को तो मन कृत्वा का अर्थ है कि मन को उस कार्य में लगाना, अर्थात हमारी साधना में मन को लगाना। परंतु यदि मन चिंतन करता रहेगा अन्य चीजों का, इस भौतिक संसार की वस्तुओं का, तो वो आत्मसंस्थम में स्थित नहीं हो सकता, अर्थात जीव आत्मा में स्थित नहीं हो सकता उसकी चेतना। इसलिए न किंचित, किंचित का अर्थ होता है कुछ थोड़ी सी मात्र, यहां पर कहा गया है कि किंचित भी अन्य वस्तुओं का चिंतन नहीं होना चाहिए, किंचित भी, ध्यान में रखिए, किंचित भी, न किंचित चिंतयेत, तब जाकर ये मन कृत्वा होगा, तब जाकर आत्मसंस्थम होगा। और ये न किंचित चिंतयेत, ये स्थिति साधक कैसे प्राप्त कर पाएगा? बुद्धया, जब वो उस मन के ऊपर बुद्धि को बिठाएगा, अर्थात बुद्धि का नियंत्रण उस मन के ऊपर होगा तभी। और बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बुद्धि के विषय में भगवान इस श्लोक में कहते हैं धृति गृहीतया, अर्थात दृढ़ता पूर्वक। वो बुद्धि उसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, असंशयम, बिना संशय की वो बुद्धि जो मन को नियंत्रण में रखे और कोई भी प्रकार की वस्तुओं का चिंतन वो मन न कर सके, तब आत्मसंस्थम। परंतु ये सब कुछ होगा कब और कैसे? भगवान कहते हैं शनै शनै। शनै शनै का अर्थ क्या है? धीरे धीरे, क्रमशः। जैसे हमने इस श्लोक को लेने से पहले क्या कहा कि हर चीज भगवान ने क्रमशः दी है। क्रमशः का अर्थ है क्रोनोलॉजिकल, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। अब ये श्लोक, हम जो साधक कलयुग में साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे लिए एक चुनौती है। ये चुनौती इसलिए है क्योंकि कलयुग में माया देवी प्रकृति, उसने क्या कर रखा है हमारे लिए? उसने हमारे लिए इंद्रिय भोग के साधन क्रमशः नहीं दिए और धीरे धीरे नहीं दिए हैं, तुरंत, इंस्टेंट, जिसे कहते सब कुछ इंस्टेंट। और जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे इंद्रिय भोग भौतिक प्रकृति इन वैज्ञानिकों को इस्तेमाल करते हुए इंस्टेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं हमको। आपको पहले बंबई से दिल्ली या फिर दिल्ली से कहीं और या कश्मीर से कन्याकुमारी यदि जाना होता तो पहले लोग चलकर जाया करते थे। आजकल आपको यदि कहीं से कहीं पर जाना है तो विमान है। वही जो आपको 25 घंटा ट्रेन लगाएगी वो विमान एक घंटे में आपको पहुंचाएगा। तो क्या हो रहा है? सब कुछ बहुत जल्दी मिल रहा है। पहले आपको यदि कुछ पकाना होता तो उसके लिए तैयारियां करनी पड़ती। आजकल सब कुछ बना बनाए मिलता है, 2 मिनट्स नूडल्स, है ना, मैगी, 2 मिनट्स नूडल, और वो बताते भी हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप आराम फरमाइए, पानी गरम कीजिए, 2 मिनट में से डालिए, हो गया। आजकल तो वो भी करने की जरूरत नहीं, इंस्टेंट इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट दिस, इंस्टेंट दैट। वो पहले मुझे याद है बचपन में आता था गिट्स, गिट्स आता है, अभी भी आता है, इंस्टेंट गुलाब जामुन, है ना, इंस्टेंट इडली। अब पहले यदि किसी को इडली बनानी तो 1 दिन पहले उसको घोलना पड़ता था सब कुछ, अब इंस्टेंट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उसको लाइए इंस्टेंट, और नाम भी सही दिया है गिट। आप जानते हैं गिट किसे कहते, क्या बोलते हैं मराठी में उसको, गिल गिल। सोच विचार कर कर नाम दिया कि और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस लाइए और गिटो। आपको किसी से बात करनी है, पहले क्या था वो ट्रंक कॉल, ट्रंक कॉल करना, ऑपरेटर को फोन करना पड़ता था, फिर वो ऑपरेटर आपको कनेक्ट करता था, और इंटरनेशनल कॉल तो छोड़ दीजिए। आजकल तो बस वो सेलफोन में कुछ बटन दबाइए और यहां से अमेरिका, वहां अमेरिका बात हो रही, कोई बैठा हुआ एंटार्क्टिका में वहां से बात हो रही है, सब कुछ इतना इंस्टेंट हो रहा है। पहले चिट्ठी, चिट्ठी भेजने के लिए वो क्या, वो कबूतर वो पहुंचाता था, पता नहीं वो कौन सी सदी का चिट्ठी, कौन से सदी में पहुंचती थी। और फिर वो डाकिया वो साइकिल पर घूम घूम के यहां से वहां, यहां से वहां, ये भी एक जमाना था। आजकल ईमेल, उसमें भी फिर आजकल वो इन्होंने वो निकाल दिया, ईमेल में भी 1-2 मिनट लगते हैं, तो चैटिंग निकाल दिया कि यहां से वहां डायरेक्टली चल रहा है। फिर वो चैटिंग में मजा नहीं आया तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू हो गया कि आप देख देख के भी कर सकते हो। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं कि हम सब इससे घिरे हुए, ये सेलफोन, ईमेल फैसिलिटी, गिट्स, ये सब से घिरे हुए हम लोग अब अपनी माला लेके बैठते हैं, है ना। तो हमारी क्या अपेक्षा रहती है, किधर है इंस्टेंट, इंस्टेंट कृष्ण प्रेम किधर है, एक माला, 2 माला, 3 माला, 16 माला, और वो भी कब से 16 माला मैं घुमाए जा रहा हूं, घुमाए जा रहा हूं, कहां पर है। एक बार एक नए व्यक्ति को मैं माला के बारे में बता रहा था कि कैसे माला करनी चाहिए, तो वो उसको उसने पूछा ये बीच वाला इतना बड़ा क्या है, तो मैंने कहा इसको मेरु मणि, कृष्ण मणि बोलते हैं, मतलब यहां से शुरू करो तो कृष्ण मिल जाएंगे इधर तक आने तक, 108 में। मैंने कहा आप यदि तीव्रता से करेंगे तो पहले में ही मिल जाएंगे आपको, पहले में ही लेके रिवर्स गियर कर दो, पीछे ही है ना वो। एक मंत्र में ही मिल सकते हैं। तो अब होता क्या है कि ये देखिए, ये साजिश है कली की, ये कली, मूर्तिमान कली जो है उसकी साजिश है कि हमें इस भावना में हर समय रखना कि कहां है कृष्ण प्रेम। और जब हमें तुरंत इंस्टेंटली वो कृष्ण प्रेम नहीं मिलता तब क्या होता है, उत्साह धीरे धीरे, उत्साह, विश्वास, धैर्य धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए देखिए हमारे आचार्य, उन्होंने कितने सोच विचार कर कर हमें शास्त्र प्रस्तुत किए हैं, रूप गोस्वामी उन्होंने क्या कहा, उत्साह निश्चया धैर्य, कि ये उत्साह कब बना रहेगा, भक्ति में उत्साह, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का उत्साह कब बना रहेगा, जब हमारे अंदर धैर्य है। धैर्य का अर्थ पेशेंस। हमारे अंदर धैर्य कब बना रहेगा, जब डिटर्मिनेशन, जब दृढ़ व्रत हमारे अंदर है कि हां कृष्ण प्रेम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अवश्य ही हमें प्राप्त होगा। तो हमें यह समझना है कि भक्ति में, यहां पर भगवान बता रहे हैं महत्वपूर्ण, ये सारे तो हम जानते हैं कि मन कृत्वा बुद्धया कैसे एकाग्रचित होकर सब कुछ करना है, परंतु यहां पर महत्वपूर्ण शब्द हम साधकों के लिए, विशेष रूप से कलयुगी साधकों के लिए क्या है, शनै शनै। तो ध्यान में रखना, शनै शनै का अर्थ है, भगवान कहते हैं धीरे धीरे और क्रमशः। तो भगवान क्या हमें सिखा रहे हैं कि कौन सा गुण हमें हमारे अंदर उतारना है एक साधक के जीवन में, धैर्य। कई बार हमें लगता है कि हां पिछले 10 सालों से मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूं, या एक साल से कर रहा हूं, या कई बार एक महीने से भी कर रहा हूं, तो हमें ये अच्छी बात है, ये अपेक्षा होनी चाहिए। परंतु यदि हम हरे भगवान यदि ये कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्रमशः, तो ये समझना चाहिए कि हम स्टेप ले रहे हैं कि नहीं। आप सीढ़ी चढ़ते हो तो सीढ़ी चढ़ते समय कई बार आप जोश में आके 3-4 सीढ़ी एक साथ लांग लेते हो ना, एक साथ लांग लेते हो 3-4 सीढ़ी, परंतु उसमें डर क्या है, फिसल गए तो जितनी 3-4 सीढ़ी लांगी है उतने ही ना तेज रफ्तार से नीचे गिरोगे, और फिर पैर टूटेगा, और फिर एक सीढ़ी भी चढ़ने के लिए फिर 2 लोग लगेंगे। इसलिए आजकल देखिए एक और चीज, लिफ्ट, कि यदि आपको कहीं से कहीं जाना है तो लिफ्ट में जाइए, तो उसमें समझ में नहीं आता कि आप ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं वहीं खड़े क्या हो रहा है, खाली ऊपर वो नंबर दिखते हैं चेंज होते होते। आजकल भारत में तो खैर लिफ्ट वो धक्का एकदम झटका देके चालू करती है तो समझ में आता है कि हाँ लिफ्ट चालू हुई, परंतु पाश्चात्य देश में ऐसी लिफ्ट है कि आप अंदर जाओ समझ में नहीं आता लिफ्ट चालू भी हुई क्या, और फिर अचानक दरवाजा खुलता है आपको लगता है आप वहीं पे खड़े थे, आप पहुंच गए 100वें माले पे। तो उसमें भी वो लोग क्या दे रहे हैं कि तुरंत स्टेप्स मत लो, स्टेप बाय स्टेप कुछ मत करो, सब तुरंत होना चाहिए। चटमग्नी पट ब्या बोलते ना, और फिर पट ओ वी डिवोर्स भी, लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो अब हमारे आचार्यों ने हमारी भक्ति की जो क्रमशः प्रगति है, हम सभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, हमें जो इतनी साधना कर रहे हैं जप कर रहे हैं इसका कारण क्या है, हमें क्या चाहिए, कृष्ण प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने की विधि हमारे आचार्यों ने क्रमशः कैसे दी है। हमें तो क्या लगता कि हम आए माला उठाई वहां पे जो भी है वो स्टैंड में लटकी हुई, शुरू किया बस कृष्ण प्रेम इंस्टेंटली अंदर संचारित हो जाना चाहिए, है ना। यहां पे देखिए हमारे आचार्य बताते हैं कि कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा, श्रद्धा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और अंततः प्रेम। तो ये सीक्वेंस ध्यान में रखना। वो जैसे पहले हम खेलते थे ना, वो सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी खेला आप लोगों ने? सांप सीढ़ी, तो सांप सीढ़ी में क्या, वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो सीढ़ी आपको ऊपर ले जाती है, बीच में बहुत से सांप, बीच में बहुत से सांप यहां वहां फुफकारते रहते हैं डंक मारने के लिए, और उसमें आपको वो 100 स्क्वायर तक पहुंचना है। उसके बीच में 99 या 98 में सांप बैठा रहता है, और वहां पे डंक मार दिया सीधा नीचे। तो साधना भक्ति भी कई बार ये सांप सीढ़ी के समान है। जैसे भरत महाराज, वो भाव भक्ति तक पहुंच गए थे। देखिए कहां पर है भाव, ध्यान में देखिए कहां पर है भाव, वो कहां से कहां, श्रद्धा से लेके भाव और अंतिम प्रेम, बस लास्ट वो सांप सीढ़ी का 100 स्क्वायर बाकी है। वहां पर वो एक हिरण से आसक्त हुए, फिर से नीचे, फिर से हिरण की योनि में, भरत महाराज से हिरण की योनि में उन्हें जाना पड़ा। तो यहां पर बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है, रूप गोस्वामी कहते हैं श्रद्धा, सबसे पहले हम भक्ति में आते हैं श्रद्धा। ये श्रद्धा जो निष्ठा आगे बताई गई है, निष्ठा से थोड़ी अलग है ये, इसे कहते कोमल श्रद्धा। कि हां, हम नास्तिक नहीं थे, आस्था थी। आस्तिक का अर्थ क्या होता है? भगवान में आस्था होना। आस्तिक का अर्थ ये नहीं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया, केवल भगवान में आस्था है। तो भगवान में आस्था है तो हम सब को भगवान में कुछ ना कुछ आस्था, इसलिए तो हम मंदिर में आए। जैसे कि कोई नास्तिक वो मंदिर में क्यों आएगा? वो कहते हैं ना, जिस घर जाना नहीं उसका पता क्यों पूछना। जैसे हम अब जो चार नियम बहुत से भक्त पालन कर रहे हैं, तो हम जानते हैं जहां पर चार नियम तोड़े जाते हैं वहां पर क्यों जाना, उस घर जाना नहीं तो उसका पता भी क्यों पूछना। इसे कितने देशी दारू के केंद्र हैं क्या पता, क्यों जानना है, है ना? परंतु जो पियक्कड़ है उसे पता है कौन से नुक्कड़ पर कौन से देशी दारू की दुकान कब खुली रहती है, उसमें कौन सा अच्छा माल कब कितना सड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि ताजा तो मिल होना नहीं चाहिए ना, जितना सड़ा उतना अच्छा। उसे यदि पूछो कि बताओ नासिक में कितने मंदिर हैं, कहां कहां स्थित हैं, तो वो तो कौन सा मंदिर भाई, एक ही मंदिर, हम तो एक ही मंदिर में जाते हैं, मदिरालय, वो हमारा मंदिर, ये हमारा भगवान। तो श्रद्धा, हम सब में श्रद्धा थी इसलिए तो हम आए कि चलो भक्ति में प्रगति, या कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण, या कीर्तन के प्रति कोई आकर्षण, किसी ना किसी प्रकार से हम आकर्षित हुए और वो श्रद्धा हमारे अंदर आई। और श्रद्धा आने के पश्चात फिर हमने किया क्या, भक्तों का संग किया, साधु संग। और धीरे धीरे साधुओं के संग में, जैसे जब हरे कृष्ण आंदोलन में कोई आता है तो भक्तों के संग में आता है, तो देखता है जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो सारे भक्त हाथ में माला झोली लिए हरे कृष्णा जोर जोर से कर रहे हैं, और लंबा चौड़ा तिलक है, कंठी माला, और सभी कोई यहां घूम रहा है, कोई यहां घूम रहा है, कोई वहां घूम रहा है, कोई बैठे जोर जोर से कर रहा है, तो सभी जगह हरे कृष्णा चल रहा है। तो जब आता है तो देखता है सब हरे कृष्ण सब साधना में लगे हुए, कोई दंडवत दे रहा है, कोई कूद रहा है, कोई नाच रहा है, कोई खा रहा है, सब कृष्ण से संबंधित। तो अब उसे उसे लगता है ये लोग सब इतना कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। कई बार हम देखते हैं सुबह का हमारा जो मॉर्निंग जप का कार्यक्रम होता है 6:45 से लेके 7:45 तक, उसमें कोई नया व्यक्ति वो आता है, वो देखता है सभी बैठे हुए हैं और सभी फायरिंग चल रहा है माला लेके, तो वो उसको समझ में नहीं आता कि अब मैं अंदर आ सकता हूं, आऊं, करूं क्या। तो कई बार वो आके बैठ जाते हैं ऐसे आंख बंद करके, और फिर तुरंत कोई भक्त देखता है कि ये दोनों हाथ खाली हैं इसके, तो उसको माला थमा देते हैं, ये माला लीजिए और ये पढ़िए और इसको जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हाथ ऊपर करने की भी जो विधि है, नए नए जब हम समझ में नहीं आते अचानक सब लोग हाथ ऊपर क्यों कर देते हैं, कि अचानक वो स्पीकर ने बंदूक निकाल ली क्या, सब हाथ ऊपर कर दिया। तो फिर जब हम भक्तों के संग में आते हैं, साधुओं के संग में आते हैं, तो बिना भजन क्रिया किए कोई जा नहीं सकता बाहर। उसको एक बार तो महामंत्र बुलवा के रहेंगे किसी ना किसी प्रकार से, या प्रसाद खिलवा के रहेंगे, या नचवा के रहेंगे। वो बेचारा खड़ा है, सभी लोग नाच रहे हैं जोर जोर से, चलो अंदर खड़े क्या हो, देख क्या रहे हो, इधर कोई स्पेक्टेटर नहीं होता, सब प्लेयर है यहाँ पे, चलो। तो नाचना कीर्तन करना ये सब कुछ लग जाता, वो अनजाने में सब कुछ हो रहा है, उससे समझ में नहीं आ रहा उसको क्या हो रहा है। लेकिन वो ये अब बहुत से संडे फीस सुन सुनकर 2010 के संडे फीस में समझ में आता है कि अरे हाँ, मैं श्रद्धा मेरे में थोड़ी थी, मैं आया फिर साधुओं का संग किया, मैं भजन क्रिया में लग गया, मैं थर्ड स्टेज पे पहुंच गया। और फिर धीरे बताया जाता है उसको अनर्थ निवृत्ति, कि हम सब के अंदर ये षड रिपु, ये 6 राक्षस पनप रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6, ये 6 अंदर हैं और हम इन्हें पाल पोस रहे इतने समय से। तो फिर भजन क्रिया करते समय बोलने की भी आवश्यकता नहीं, अपने आप समझ में आता है। फिर धीरे धीरे कभी ये राक्षस अपना मुंह दिखाता है रावण की तरह, कभी वो राक्षस अपना मुंह ऊपर करता है, कभी काम कभी क्रोध कभी लोभ, और फिर हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि उस वो जो स्थिति है अनर्थ निवृत्ति की स्थिति, वो हमारी प्रगति की स्थिति है। हमें क्या लगता है, अरे ये सब पहले तो मैं नहीं देख रहा था, इतना क्रोध इतना काम इतना लोभ ये सब पहले तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तो पहले मैं ज्यादा प्रगत था। आपने अनुभव किया कि भजन क्रिया करने के बाद ये सारे जो अनर्थ हैं ये और बाहर अपना मुख दिखाते हैं, ऊंचा ऊंचा कर कर चिंघाड़ने लगते हैं, परंतु वो हमारी प्रगति का लक्षण है। यहां पर जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि अब वो निवृत्ति हो रही इन अनर्थों से, तो निवृत्ति होते हुए वो चिल्ला चिल्ला कर जा रहे हैं, गाली दे दे के जा रहे हैं कि इतना हमें खिलाया पिलाया, इतना हमने तुमको खिलाया पिलाया। काम बोलता है कि मैंने इतना तुमको क्या कुछ नहीं दिलाया, काम दिलाया, क्योंकि मेरे वजह से ही तुम काम करना शुरू किए, तो मैंने तुम्हें काम दिलाया और मुझे अब बाहर फेंक रहे हो लात मार कर। तो ये सब वो उस शेर के समान हैं जिस शेर को अब वो रिंग मास्टर ने पिंजड़े में डाल दिया और उसे कुछ खाने नहीं दिया, तो वो चिल्लाना शुरू करता है शेर, तो जोर से चिल्लाता है, फिर धीरे धीरे शक्ति नहीं, कुछ खाने को मिल नहीं रहा, तो धीरे धीरे उसकी जो उसका जो चिल्लाना है उसका वॉल्यूम कम होता है। आप लोगों ने वो मी एंड माय माइंड देखा होगा हरे कृष्णा उत्सव में, उसमें बताया कैसे वो माइंड इतना चिल्लाता है, फिर धीरे धीरे उसको जब कुछ मिल नहीं रहा तो वो भी फिर सोचता है क्या करें, लाओ मेरे को भी एक माला दो, तो उसे भी एक माला, फिर दोनों वो आत्मा और वो मन दोनों हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक हमारे अमेरिका में इस्कॉन का केंद्र है न्यू वृंदावन, तो वहां पर हम एक भक्त से मिले और वो भक्त वो बता रहे थे कि कैसे वो भक्ति में आए, कौन कौन से स्तरों से वो गुजर कर भक्ति में आए और क्या अब उनका स्तर है भक्ति में। बहुत ही रोमांचक उनकी कथा। उन्होंने कहा कि भक्ति में आने से पहले वो एक माफिया गैंग के मेंबर थे, समझते हैं माफिया गैंग, तो अमेरिका में माफिया गैंग के वो मेंबर थे और ये सब कुछ जैसे किसी को मार डालना, लूट लेना, डकैती, चोरी, ये सब कुछ रोज की उनकी साधना। हमारी रोज का हमारा 16 माला जप और ये सब उनके उनकी ये सब रोज की साधना, किसी को मार डालना, ये सब चीजें। तो एक बार पुलिस इनके पीछे थी तो ये भागते हुए कोई ऐसा सहारा ढूंढ रहे थे जहां पर ये छिप सके, तो इन्होंने सुना था कि ये हरे कृष्णा मंदिर में ज्यादातर लोग इतनी आसानी से घुसते नहीं क्योंकि इनके सारे नियम बहुत कड़े होते हैं और इनका पहनावा अलग होता है, वेशभूषा इनकी अलग होती है। तो ये दीवार से कूद के, पुलिस इनके पीछे कूदते हरे कृष्णा मंदिर में कूदे, हरे कृष्णा मंदिर में कूदे। अब शुरुआत के दिन थे, वो इतने ज्यादा भक्त भी नहीं थे मंदिर में, और वो रात्रि के समय कूदे, रात्रि के समय कूदे जब सारे भक्त सो रहे थे। अब पूरे दिन भर की सेवा कर कर साधना कर कर सुबह 4 बजे उठना है, तो रात को जब भक्त सोते हैं तो चाहे प्रलय हो जाए कोई, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको कोई उठा नहीं सकता। तो वो रात के समय कूदे और फिर, और भक्त तो क्या कुछ चोरी करने के लिए तो कुछ होता नहीं, तो ज्यादा कर सब खुला रखते थे, कुछ बंद बंद तो करते नहीं थे। ले जाएगा तो कोई क्या ले जाएगा, धोती कुर्ता तिलक, जैसे अमेरिका में वो कहते हैं ब्रह्मचारी, उस समय तो सब ब्रह्मचारी मंदिर में रहने वाले, तो कहते हैं कि ब्रह्मचारी का जीवन क्या है, 3 bags, बीड बैग, स्लीपिंग बैग, बुक बैग, ये 3 bag उसका होता है बस। तो अब इस व्यक्ति ने किया क्या कि ये वहां पर मंदिर में आकर सो गए, तो उस रात को पुलिस से तो ये बच गया। अब इसे पता नहीं कि ये लोग तो 4 बजे उठ जाते हैं, तो 4 बजे सभी लोग उठ गए और सभी लोग नींद में, किसी को ध्यान में नहीं कि ये कोई नया व्यक्ति भी भर्ती हुआ है कल रात को। तो अब सबको ये लग रहा था कि कोई भक्त शायद लाया होगा प्रचार कर कर किसी को, क्योंकि वहां पर उस समय अमेरिका में ये लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते, कोई मिलता, कोई बहुत रुचि दिखाता तो उसे कहते चलो मंदिर, और वो उस भक्त के साथ आकर मंदिर ज्वाइन कर लेता, उस प्रकार से उनका प्रचार चलता इंस्टेंट। तो सभी को लगा कि शायद इसने प्रचार कर कर रात को लाया होगा, तो कोई पूछा नहीं कि भाई तुम कहां से आए, तुम्हारा नाम पता क्या है और कौन तुमको लाया, तो सभी को लगा और ये भी अब बचने के लिए सब देख रहा है कि लोग कर क्या रहे हैं। सुबह 4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाना और फिर ये सब चादर वगैरह पहनना, उसको उसको क्या बताए, धोती, तो ये चादर पहन लेना और फिर ये मट्टी लगाना सर पे, और फिर ऑल्टर खुला और शंख बजा और आरती चल रही। ये तो एकदम बहुत चक्का हो क्या, मैं अमेरिका में हूं या कौन से प्लैनेट पे हूं, ये क्या हो रहा। तो सबको देख रहा, सब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े, तो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, सब लोग हाथ ऊपर के, तो भी हाथ ऊपर कर लिया, और सभी को लगा अभी नया नया है तो सब उसको सिखा रहे थे कि अभी चलो यहाँ पे खड़े हो, अभी तुलसी महाराज, अभी गोल गोल घूमो, तो तुलसी महाराज गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। उसे कुछ समझ नहीं, जो भी कुछ, उसे तो बचना बस केवल पुलिस है, तो जो भी कुछ, फिर सब कुछ मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, भागवतम में बैठो, बीच में भागवतम में बैठो सुनो, तो सुना सब कुछ, उसके बाद में फिर प्लेट सामने, फिर प्रसाद। तो अंत तक कुछ समझ में आया कि हाँ ये थोड़ा कुछ मेरे लायक हुआ। अब ये व्यक्ति एक दिन, दो दिन, तीन दिन, धीरे धीरे उस सारे भक्त इतने अच्छे से उससे व्यवहार करते, उसे पूछते कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता, ये वो सब कुछ, तो बड़े प्रेम से सभी लोग उससे पूछते, और धीरे धीरे वो उसको सेवाएं देने लगे, तो सेवाएं वो करने लगा, और उसे सब कुछ इतना अच्छा लगा, वो रोज प्रवचन सुनता और प्रवचन में इतनी अच्छी बातें सुनता, वो उसे धीरे धीरे इतना अच्छा लगा सब कुछ कि 6 महीने तक वो मंदिर के प्रांगण से बाहर ही नहीं गया। 6 महीना वो सोच रहा था, बाद में वो हमको ये भक्त बता रहे थे, उस समय वो सोच रहा था कि यदि मुझे पुलिस उस दिन पकड़ लेती तो मुझे जेल में बंद करती, और वो पता नहीं कितने समय, तो यहां पर ये मैं बंद हूं, ये जेल से तो बहुत अच्छा है, इतना मुझे स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, इतने अच्छे भक्त हैं, मुझसे इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, इतने सुंदर विग्रह हैं, ये नाचना गाना सुबह 4 बजे कौन नाचता है। वो बोल रहे थे कि मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा, ये कितनी पार्टियां मैंने अटेंड की, कितने ऐसे ऐसे लोगों के साथ मैंने संग किया, परंतु आज तक नहीं देखा कि कोई ऐसे भी लोग हैं जो उठते सुबह 4 बजे पार्टी करते हैं और नाचते हैं। ये कितने बड़े बड़े, इतने सारे उद्योगपति हैं, पैसे वाले, धनवान, इतना सब कुछ ऐश्वर्य है, परंतु इसमें से कोई भी एक मैंने ऐसा नहीं देखा कि सुबह उठते ही वो डांस करना शुरू करे। तो इतना उसे अच्छा लगा कि 6 महीना वो बाहर नहीं। तो फिर उसके बाद उसे भक्त अब कहे कि आपको अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बाहर जाकर पुस्तक वितरण। तो उसने टेंपल प्रेसिडेंट से कहा कि आप मुझसे कुछ भी करा लीजिए, मैं झाड़ू पोता लादी, टॉयलेट साफ करना, किचन में सब कुछ कर लूंगा, मुझे बाहर मत भेजिए। तो उस समय भक्तों को इतना समझ में नहीं आया कि बाहर क्यों नहीं जाना चाहता। तो 1 साल बीत गया, 1 साल ठीक है मत जाओ, यहां पर अंदर सेवा करो। तो 1 साल बीत गया, उसके पश्चात फिर अब दीक्षा का समय, अब वो योग्य बन गए दीक्षा लेने के लिए। तो वो जिन सन्यासी से दीक्षा लेने वाले थे, अब उन सन्यासी को उनको बताना आवश्यक था कि वो कौन से गैंग से एसोसिएटेड। तो उन्होंने फिर उनसे कहा कि मैं आपको मेरे जीवन की असली कथा बताना चाहता हूं कि मैं हरे कृष्ण आंदोलन में आया कैसे। तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी, दीवार फांद कर मैं हरे कृष्ण मंदिर में कूदा, और रात का समय था, मैं सो गया, और फिर उसके बाद में इन्हीं के साथ जीवन बिताने लगा, इतना अच्छा मुझे लगा, अब मैं जान गया हूं जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे फिर से अब उस जीवन में नहीं जाना, और मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, इसलिए मैं ये सब कुछ आपको बताना चाहता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम एक और कदम उठाओ, कि तुम जाकर पुलिस को यह सब कुछ बताओ। पुलिस को यह सब कुछ बताओ, तो उन्होंने फिर वो ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण का जो चरम श्लोक गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य, कि जो पूर्ण शरणागति भगवान श्री कृष्ण की कर लेता है उसे किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं। तुम जाओ, तुम यदि अब सच के पथ पर हो, ईमानदार हो और भगवान पर यदि विश्वास है, तुम्हारा निष्ठा है, तो अवश्य ही भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। तो वो गए पुलिस के पास गए। पुलिस जो इतने समय से इसे इन्हें ढूंढ रही थी, तो ये अब सरेंडर करने गए पुलिस को। तो वहां पर पुलिस को इन्होंने अपना सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ इनके जीवन में। और जब इनके ये सुनवाई हुई कोर्ट में वगैरह, तो जज के सामने सब कुछ प्रस्तुत किया गया। तो जज ने देखा कि इस व्यक्ति ने पूरे जीवन में किन किन का मर्डर किया था, बहुतों का मर्डर भी हुआ था, तो किन किन का मर्डर किया था, वो जो भी जिनका भी मर्डर किया था वो भी दूसरे गुंडे ही थे। तो ये जज ने एक ऐसा क्लॉज निकाला कि इस व्यक्ति ने, जो तुम सब पुलिस हो, उन्हीं का काम इसने किया है। He has helped the police department in one sense by killing them. तो उसके बलबूते पर इनको रिहा कर दिया और उनको वहां से रिहा कर कहा कि आप जो कुछ कर रहे हो वो मैं बहुत, मेरे हृदय से, अंतकरण से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, कि प्रशंसा करना चाहता हूं कि इतना बदलाव आपके जीवन में आ गया। क्योंकि वो जो जज था, वो जज, उसने बचपन में हरे कृष्ण का प्रसाद खाया था और उसने हरे कृष्ण के प्रति, उसकी इतनी कृतज्ञता थी, इतना ग्रैटिट्यूड था हरे कृष्ण के प्रति, कि बचपन में जब वो अपने कॉलेज में स्ट्रगल कर रहा था वो जज, तो उसे ये जो फूड फॉर लाइफ की खिचड़ी और प्रसाद ये खा खा के वो बड़ा हुआ था। तो देखिए, उसने जो बचपन में हरे कृष्ण का प्रसाद खाया, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद खाया, और फिर ये भक्त का जब केस इनके सामने आया तो उसे याद आया कि हाँ, विश्वास हो गया कि ये जो व्यक्ति के अंदर बदलाव आया है ये कोई साधारण बदलाव नहीं हो सकता। तो ये भक्त फिर वहां से रिहा हुए, बहुत खुशी खुशी वो मंदिर आए, उनकी दीक्षा हुई। और फिर एक दिन वो संडे फीस्ट प्रोग्राम में बहुत से भक्त आए हुए थे और बहुत से नए व्यक्ति भी आए हुए थे। तो संडे फीस्ट प्रोग्राम में उन्होंने देखा कि दूसरे इस्कॉन मंदिर, जैसे हमारे यहाँ पर कभी सूरत से आते हैं, कभी बंबई से भक्त आते हैं, पूना से आते हैं, तो वैसे दूसरे इस्कॉन मंदिर से बहुत से भक्त आए। और उन भक्तों में इन्होंने देखा कि एक महिला, उनका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। तो उनके पास गए, वो भी इनको देख रही थी, तो दोनों एक दूसरे को देखे, हम पहले मिले हैं क्या? तो जो महिला थी वो पहचान गई, क्योंकि वो भी इन्हीं की गैंग की मेंबर थी। वो भी इन्हीं गैंग की मेंबर थी और वो अमेरिका के दूसरे किसी मंदिर में भक्त बन गई और ये यहां भक्त बन गए। तो पहले दोनों थोड़ा एक दूसरे को देखकर संशय कर रहे थे कि ये कुछ गैंग का स्ट्रेटेजी तो नहीं है, आप यहां पे तिलक वगैरह लगा के, कि यहां पर तो किसी को मारना नहीं है ना। देखिए, प्रभुपाद की कृपा कहां कहां से किन किन को कैसे मिलती है और कैसे उनके भक्ति में प्रगति होती। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे एक हमारे अमेरिका के भक्त वो बता रहे थे हमें कि ऐसे ही एक व्यक्ति वो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये कुछ चार पांच ब्रह्मचारी उनका वैन लेके निकले थे। तो उन्होंने वैन पार्क किया और वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे बाजार में, मार्केट में, और जब वापस आए तो वैन चोरी हो गई, उनकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की वैन चोरी हो गई। अब ये लोग सब चिंतित, क्योंकि मंदिर में कैसे अब बताएंगे, प्रेसिडेंट पूछेगा वैन किधर है, वैन चोरी कैसे हो गई, तुमने ठीक से लॉक नहीं किया, क्या किया। तो उनके ये जो ब्रह्मचारी ज्वाइन किए थे बोले चिंता मत करो, आप लोग सब यहां पे प्रसाद खाओ, आधे घंटे में वैन में ला कर देता हूं। तो आधे घंटे में वो वैन लेकर आ गए। तो ये पूछे भाई कैसे, तुमने कैसे किया, बोले मैं भी उसी गैंग का था पहले, वो भी उसी गैंग के थे, और उन्हें मालूम है कि ये उठाकर कहां लेकर जाते हैं, कैसे उठाते हैं और कहां लेकर जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कोई भी लग सकता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे उदाहरण देख रहे हैं कि जो किसी न किसी प्रकार से, अब जैसे ये भक्त बता रहे थे कि ये जब दीवार से कूदे तो इनके अंदर थोड़ी सी श्रद्धा थी कि ये हरे कृष्ण मंदिर में मुझे सहारा मिलेगा, वो श्रद्धा थी उनको, पुलिस से मैं बच पाऊंगा क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, ये श्रद्धा थी उनके अंदर। कोई नहीं कि मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है बस। तो ये एक ज्वलंत उदाहरण है इन भक्त का कि जिनके अंदर इतनी सी किंचित श्रद्धा थी, उसके वजह से फिर साधु संघ हुआ और अनजाने में भजन क्रिया, और धीरे धीरे वो एक साल जो उन्होंने मंदिर में रहते हुए, बाहर नहीं गए, मंदिर में रहते हुए उन्हें जो साधना की, उसके वजह से धीरे धीरे अनर्थों की निवृत्ति हुई और उनके अंदर निष्ठा जागृत हुई कि वो पुलिस के पास भी चले गए। उनके अंदर इतनी निष्ठा जागृत हो गई कि पुलिस के पास गए, सरेंडर किया और वहां से बचकर आए। तो इन सब उदाहरणों से हम क्या सीखते हैं कि कैसे भक्ति में क्रमशः प्रगति हो सकती है एक साधक की। और ये सब उदाहरण हमारे इस्कॉन संस्था के। अब यदि हम हमारे शास्त्रों के कुछ उदाहरण लें कि जो बड़े बड़े महाजन हमारे शास्त्रों में जिनका उल्लेख है, वो भी कैसे क्रमशः उन्होंने अपनी भक्ति में प्रगति की और उन्होंने भगवत प्राप्ति की। ध्रुव महाराज इनके विषय में बताया गया है कि पांच वर्ष का बालक और इन्होंने कोई ऐसे कोई ये बताया नहीं गया कि गुरुकुल में उन्होंने कोई प्रशिक्षण लिया था, कुछ नहीं। इनकी जो सौतेली मां सुरुचि, जिन्होंने अपमान किया ध्रुव महाराज का, और वो निकल पड़े उस अपमान का बदला लेने के लिए। ध्रुव महाराज मन में क्या भावना थी, बदला लेना है, तो बदले की भावना, तो ध्रुव महाराज के अंदर बदले की भावना। और ध्रुव महाराज अपनी माता के पास गए कि मुझे बदला लेना है सुरुचि के साथ। तो अब उनकी माता सुनीति, ध्रुव महाराज की जो असली माता सुनीति, वो ध्रुव महाराज से कहती हैं कि तुम्हें जो भी कुछ प्राप्त करना है तुम भगवान श्री विष्णु की भक्ति करो। उन्हें ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहिए था ध्रुव महाराज को, सोचिए ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद, ये दिखाने के लिए कि तुमने मुझे अपमानित किया है तो मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा कि मैं क्या हासिल कर सकता हूं। क्षत्रिय खून था उनके अंदर। तो अब जब सुनीति, ध्रुव महाराज की माता, ने ध्रुव महाराज को कहा कि भगवान श्री विष्णु की भक्ति करो, वो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकेंगे, वही हैं जो तुम्हें सब कुछ दे सकेंगे, तो ध्रुव महाराज के अंदर श्रद्धा का बीज बोया किसने, सुनीति ने, किसके प्रति, भगवान विष्णु के प्रति। तो उस समय ध्रुव महाराज के अंदर यह श्रद्धा नहीं थी कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, नहीं, ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद सुरुचि को दिखाना है मुझे, बस ये उनके अंदर उस प्रकार की भावना की श्रद्धा थी उनके अंदर। फिर उसके पश्चात हुआ क्या, साधुओं का संग। ध्रुव महाराज ने किसका संग किया? नारद मुनि। नारद मुनि का संग किया तो नारद मुनि ने क्या कहा? भजन क्रिया, अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि इसका जप करो और इस प्रकार से तपस्या करो। मधुवन में वो गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए उन्होंने तपस्या एक एक महीना क्रमशः बढ़ाई, उनकी तपस्या, उनकी साधना। पहले महीने में वो हर 3 दिन बाद कुछ फल खाया करते थे, बस एक पैर पर खड़े ध्रुव महाराज हर 3 दिन बाद कुछ फल खाया करते थे। दूसरे महीने में वो फल भी खाना छोड़ दिया, अब हर 6 दिन बाद केवल सूखे पत्ते खाते वो। तीसरे महीने में हर 9 दिन बाद उन्होंने वो पत्ते भी खाना छोड़ दिया, केवल पानी पीते बस थोड़ा। और फिर चौथे महीने में उन्होंने हर 12 दिन बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया पानी पीना, केवल सांस लेते बस। कल्पना कीजिए जो किस रफ्तार से ये अपनी साधना कर रहे थे। और फिर 5वें महीने के पश्चात उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया और 6ठे महीने में भगवान आ गए। 6 महीने में उन्होंने अपनी साधना के द्वारा क्रमशः उसमें बढ़ोतरी करते हुए, साधना में बढ़ोतरी करते हुए 6 महीने में ध्रुव महाराज को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं कि भक्ति, हालांकि हमें ये क्रमशः स्तर दिए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, परंतु ध्रुव महाराज के उदाहरण से हम क्या सीख रहे हैं कि वो एक एक स्टेप में भी हम इतनी तीव्रता डालें तो हां, हम इंस्टेंटली, वो जो इंस्टेंट प्रकृति हमें प्रस्तुत कर रही इस कलयुग में, वो भी हम कम से कम समय में भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम कर पाएंगे। अब यदि ध्रुव महाराज आराम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते, खा पी कर आराम से थोड़ा घर आते, माता को बोलते थोड़ा टिफिन बना के दो और 2-3 दिन के लिए, यदि उनकी भक्ति ऐसे आराम से चलती रहती तो भगवान भी फिर ठीक है, आराम से आऊंगा मैं भी। परंतु भगवान ने जब ध्रुव महाराज की तीव्रता को देखा, हालांकि भगवान भी ऐसा नहीं कि पहले महीने पहुंच गए, भगवान ने देखा कि क्रमशः ये मेरा भक्त कैसे प्रगति कर रहा है और अंततः भगवान उनकी तीव्रता देखते हुए प्रकट हुए, अवतरित हुए। इसी के साथ उदाहरण स्वयं नारद मुनि का है, जो ध्रुव महाराज के गुरु, इनके जीवन का उदाहरण, बचपन में इनकी माता ने इनको सिखाया, जैसे ध्रुव महाराज की माता ने सिखाया वैसे नारद मुनि की माता ने नारद मुनि को सिखाया, जब नारद मुनि छोटे से थे, कि साधुओं की सेवा करो। और साधु आए थे जहां, और इनकी माता विधवा थी, केवल नारद मुनि और उनकी माता जंगल में एक कुटिया में रहते थे, तो साधु विचरण करते हुए वहां पर रुके, तो नारद मुनि की माता ने नारद मुनि को भेजा उन साधुओं की सेवा करने के लिए। अर्थात नारद मुनि के मन में साधुओं की सेवा करने की श्रद्धा नारद मुनि के मां ने दी, तो उस श्रद्धा को लेकर फिर उनका साधु संग हुआ। साधु संग में उन्होंने इतना कृष्ण कथा सुना, उनका उच्चिष्ट खाया नारद मुनि ने। और जब वो गए तब नारद मुनि किए क्या? भजन क्रिया। वो साधु जाते जाते नारद मुनि को साधना कैसे करनी है वो सिखा कर गए। तो अपनी माता से श्रद्धा प्राप्त की, साधुओं का संग हुआ, भजन क्रिया, और फिर जब वो भजन क्रिया वो किए तो धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति उनकी होना शुरू हुई। और भगवान श्री कृष्ण, उनकी माता का देहांत जब हुआ, नारद मुनि की माता का जब देहांत हुआ, तो वो अब फुल टाइम भजन क्रिया साधना में लग गए, विचरण करते हुए भगवान को खोजते हुए। तो भगवान ने उनके उस जन्म में उनको केवल कुछ क्षणों के लिए अपना दर्शन दिया और कहा कि अब तक अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं है, अपक्व हो अब तक तुम, इसलिए जब तुम पक्के हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, मैं अवश्य ही दर्शन दूंगा। और फिर अगले जन्म में नारद मुनि के रूप में वो भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े प्रचारक भक्त बने। तो नारद मुनि के जीवन से भी हम क्या देखते हैं, शनै शनै। ध्रुव महाराज के जीवन से क्या देखते हैं, शनै शनै क्रमशः अजामिल। अजामिल के जीवन का ऐसा उदाहरण है कि अजामिल ने भक्ति की, भक्ति छोड़ दी और पाप में लग गया। अर्थात अजामिल ने तो पूरा यू टर्न लेके पाप के रास्ते पर वो चला गया था, भक्ति का रास्ता छोड़कर यू टर्न लेकर पाप के रास्ते पर चला गया। परंतु क्योंकि उसके भी जीवन में कुछ एक श्रद्धा उसके अंदर थी, और पुराणों में ये कथा है कि अजामिल के अंदर पूर्व भक्ति करने के वजह से जो श्रद्धा थी, उसके वजह से उसने अपने अंतिम पुत्र का नाम नारायण रखा अजामिल ने, और वो भी साधुओं की कृपा से ही हुआ। ये कथा आती है कि अजामिल जो कि रोज कुकर्म करने निकल पड़ता, तो एक बार कुछ साधु जहां पर अजामिल कहां का रहने वाला था आप जानते हैं, कन्नौज, कानपुर के पास जो है आज भी है कन्नौज, तो अजामिल वहां का था। तो अजामिल रोज जैसे 9 से 5 कोई काम करने निकलता, तो अजामिल अपने उस प्रकार के कामों में निकल पड़ा। और अजामिल ने विवाह किससे किया था, वैश्या से। तो कुछ साधु वहां पर आए हुए थे, तो वो ढूंढ रहे थे कुछ ऐसी जगह जहां पर उन्हें रहने का कुछ स्थान मिले, कुछ भोजन पानी मिले, मधुकरी मिले। तो वहां पर खेलते हुए बच्चों से उन्होंने पूछा कि भाई कोई ऐसा घर बताओ जहां पर हम कुछ समय के लिए समय बिता सकें। तो वो मजाक उड़ाते हुए कहे, ये अजामिल है ना, इसके घर जाओ, बहुत दानवीर है ये। तो साधुओं का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने अजामिल के घर इनको भेज दिया। तो ये साधु गए अजामिल के घर, और वहां पर अजामिल तो था नहीं, तो वो जो वैश्या अजामिल की पत्नी, अजामिल की पत्नी से वो मिले तो वो समझ गए, उन्होंने अजामिल को पहले से जान रखा था, परंतु कभी ये जाना नहीं था कि अजामिल यहां रहता और ये सब कुछ कर रहा है। और उस समय अजामिल की पत्नी गर्भवती थी, तो उन्होंने जाते हुए अजामिल की पत्नी को कहा कि हम केवल एक ही वस्तु आपसे मांगना चाहते हैं कि ये जो पुत्र पैदा होगा, वो अपनी दिव्य दृष्टि से जान गए कि पुत्र पैदा होने वाला, ये जो पुत्र पैदा होगा इसका नाम नारायण रखना केवल। तो अब वो तो एक वैश्या, और वो भी अब अजामिल के साथ रहते हुए सारे कुकर्म में वो भी लगी हुई। तो जब अजामिल आया तो इसने अजामिल को कहा कि आज कुछ साधु आए थे घर में, और उन्होंने ये कहा कि ये जो मेरे पेट में बच्चा है वो एक लड़का होगा, और उसका नाम नारायण रखने के लिए कहा। तो देखिए, उन साधुओं के संग के वजह से वो जो वैश्या, अजामिल की पत्नी और अजामिल दोनों ने मिलकर इस बात को स्वीकृति दी और उसका नाम रखा नारायण। श्रद्धा, श्रद्धा के वजह से हुआ उसका साधु संग, साधु संग से अब भजन क्रिया अजामिल की कैसे शुरू हुई। नारायण पैदा होते ही अजामिल नारायण से इतना प्रेम किया करता, क्योंकि वही एक पुत्र था अजामिल का। बाकी सारे, बताया गया है कि बाकी सारे जो बच्चे थे वो उस वैश्या के पता नहीं कहां कहां से पैदा हुए थे, और अजामिल उसकी देखरेख कर रहा था। ये केवल एक था जो अजामिल ने पैदा किया था बच्चा, इसलिए इतना प्रेम इसके प्रति। ये सारे साधु जानते थे कि ये अंतिम जो बच्चा है ये अजामिल का बच्चा है, और यदि इसका नाम नारायण होगा तो अजामिल दिन रात नारायण का नाम उच्चारण करता रहेगा। और अजामिल ने वैसा ही किया, दिन रात नारायण कहां पर हो, नारायण मेरे पास आओ, नारायण यहां बैठो, नारायण ये खाओ, नारायण के साथ खेलता खेलता इतनी बार उसने नारायण 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 नाम लिया। भजन क्रिया, और बताया गया है उस भजन क्रिया के कारण, अनजाने में जो भजन क्रिया वो करता रहा था उसके कारण उसके सारे अनर्थों की निवृत्ति होती गई होती गई होती गई। और बताया गया है कि यमराज जी वो यमदूतों को भेजे, हालांकि यमदूतों को भेजने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब पहली बार पैदा होते ही, वो बच्चा पैदा होते ही पहली बार जब अजामिल ने उसे पुकारा नारायण, अजामिल के सारे पाप उसी समय धुल गए थे, उसी समय धुल गए थे। परंतु यमराज जी ने यमदूतों को इसलिए भेजा ताकि यमदूत जान लें कि भगवान श्री नारायण के नाम लेने का क्या महत्व है। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रो पचारितम अजामिलो प्यगात नाम किमुत श्रद्धया घृणन, कि ये अजामिल मरते समय इतना बड़ा पापी अपने पुत्र को पुकार रहा था, परंतु क्योंकि भगवान श्री नारायण का नाम पुकारा तो यमराज जी यमदूतों को सिखाना चाहते थे कि तुम जान लो कि तुम मुझे बहुत बड़ा मानते हो, ये भगवान जो नारायण हैं इनके नाम में कितनी शक्ति है, ताकि वो विष्णु दूत के मुख से भी सुने। परंतु अजामिल को भगवान श्री कृष्ण का प्रेम कब प्राप्त हुआ, उसके पश्चात जब विष्णु दूतों ने बचा लिया अजामिल को यमदूतों से, फिर 12 वर्ष अजामिल ने साधना की हरिद्वार में जाकर, और फिर क्रमशः साधना करते करते अंततः अजामिल भगवत धाम को प्राप्त हुआ। तो इन उदाहरणों से हम क्या समझ रहे हैं आज के श्लोक को लेकर, कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं क्या, कि यदि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है अर्थात आत्म संस्थम में स्थित होना है, तो हमारे मन को नियंत्रण में रखना होगा, न चिंतयेत किंचित, किंचित मात्र भी और किसी का चिंतन न करते हुए, बुद्धि धृति गृहितया, बुद्धि को दृढ़ व्रत करते हुए, परंतु कैसे, शनै शनै क्रमशः धीरे धीरे, अर्थात भगवान विशेष रूप से हम कलयुग निवासियों को सिखा रहे हैं कि कैसे हमारी साधना में हमें उत्साह निश्चय और धैर्य, जब तक ये तीन नहीं आएंगे तब तक वो तीन जो शब्द हैं कौन से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब तक उस हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति प्रेम नहीं जागृत होगा, और तब तक श्री श्री राधा गोपीनाथ के चरण कमल हमें नहीं मिल पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।